रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। भगवान के भक्तों की चरणों की धूलि को नाभाजी महाराज बड़े सम्मान से अपने सिर पर रखने की प्रार्थना करते हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। इनमें हनुमान जी का प्रसंग चल रहा था। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए सीता जी से मिले तो सीता जी को जिस अवस्था में देखा और वहां राक्षसियों को देखा तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी आपकी आज्ञा हो कि उन सब राक्षसियों को मैं अभी मार सकता हूं। सीता जी ने कहा कि बेटा ऐसा करना अच्छे आदमियों के लिए अच्छा नहीं है। संसार में श्रेष्ठ पुरुष वे माने जाते हैं जो दूसरों के नीचे काम के बराबर अपने को नीचे नहीं ढालते। वे ऊंचे पुरुषों के समान ऊंचाई पर जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं जाते। मां आपको ये इतनी तकलीफ देते हैं, आपको डराते हैं, रावण के कहे के आपको कभी फरसा दिखाते हैं, ये मेरे से सहन नहीं हुआ कि नहीं आई। ये सहन करना ही मनुष्यता है। और फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया सीता जी ने कि देखो हनुमान, एक बार किसी जंगल में एक सिंह ने एक शिकारी का पीछा किया। शिकारी अब सिंह के सामने कितना मुकाबला करे। उसके पास एक तो बाण था या तलवार थी, और सिंह जब घुर्रा करके आया तो घबरा गया शिकारी, तो वो एक वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ चलता बहुत जल्दी चढ़ा। घबराहट में आदमी जल्दी काम करता है। तो वहां पर एक नीच था वृक्ष के ऊपर, तो सिंह ने कहा कि देख रीछ, तुम और हम दोनों इस जंगल के हैं और ये शहर से आया है शिकारी, ये मुझे भी मारने वाला है, तुम्हें भी मारने वाला है। तेरा और मेरा जो बैर है वो तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हारी और हमारी कहीं तो एकता है ही ना। जंगल के वासी तुम, जंगल के वासी हम, ये बीच में कौन आता है मारने वाला, इसलिए इसको धक्का दे दो और नीचे गिरा दो, फिर मैं इससे अपने आप सलख लूंगा, तेरी मेरी दोनों की विपत्ति टल जाएगी। रिंच ने कहा कि ये मैं जहां रहता हूं, मेरा जो वृक्ष है, मेरा जो आश्रय, वहां पर ही आ गया, अब मैं इसको नहीं मार सकता, ये मेरी शरण में आ गया कि आपकी शरण आकर के थोड़ी आया, ये तो मेरे से घबरा करके चढ़ गया, कहीं हो मेरे घर में आ गया ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये अन्याय है, पाप। सिंह ने कहा ठीक है, ये भी कहां तक बैठता है मैं देखता हूं, कभी तो नीचे उतरेगा ही। सिंह नीचे बैठ गया, और रीस था वो टहनी पर बैठा बैठा ही सोने लग गया, नींद आ गई। नींद आई तो सिंह ने उस शिकारी से कहा कि देख मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे छोड़ दूंगा, मुझे तो पेट भरने से मतलब है, भूख लगी तू नहीं मिला तो रीस सही है, रीस सो रहा है अभी, जोर से धक्का लगा दे इसे, ये नीचे गिर जाएगा, गिरते ही मैं इसको खा जाऊंगा, खाने के बाद मेरा पेट भर गया, तू तेरे घर जाना, मैं मेरे घर जाऊंगा। तो मनुष्य ने कहा कि अच्छा पक्की बात है ना, कि बिल्कुल पक्की बात है। तो वो बेचारा अचेत होकर के सोया हुआ था, सोने में चेत तो रहता नहीं, हाथ पैर यूं फुलाए हुए, तो धीरे धीरे चल करके एकदम उसको धक्का दिया रींच के, रींच यूं सावधान हुआ, धक्का खाती दूसरी टहनी पकड़ ली, वो टहनी छूटी दूसरी टहनी पकड़ ली, रींच बच गया, नीचे नहीं पड़ा। तब उस सिंह ने रींच से कहा कि देख रींच तूने तो इसको सहायता दी, और मेरे कहने पर इसने तुमको धक्का लगाया, ऐसे आदमी को तुम अपने पास रखोगे क्या, ये तो शायद तुमको सोते हुए को मार भी सकता है। तो सुरेंद्र ने कहा कि मैं इसको अभी भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे यहां आया हुआ है, ये चाहे मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। कह रहे ये विश्वासघाती है तो है ये जाने, मैं तो विश्वासघाती नहीं हूं ना। उस रींच ने उसको नीचे नहीं गिराया। इसी प्रकार से हनुमान मनुष्य को चाहिए अपना धर्म न छोड़े, चाहे हमको कैसी भी विपत्ति में पड़ना पड़े। शरणागति एक ऐसा धर्म है कि इस धर्म में मनुष्य को सब कुछ भुला देना चाहिए। मैं तो ये मानती हूं कि यदि आज रावण राम जी की शरण में चला जाए तो राम जी उसके सारे पापों को क्षमा कर देंगे। यहां मेरे समान कितने कितने और स्त्रियां कैद में, सबका माफ क्षमा कर देंगे, और मेरे वियोग में कितना कष्ट पा रहे हैं वो ये भी भूल जाएगा। हनुमान जी पर इसका असर पड़ा, और हनुमान जी ने ये सब देख करके कहा मां हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी शरणागति होती है। तो हनुमान जी से ये शरणागति, हनुमान जी ने सीता जी से शरणागति पढ़ी सीखी, और फिर हनुमान जी ने यही शरणागति विभीषण को बताई। तो कहने के लिए तो विभीषण जी सबसे बड़े शरणागत भगत कहलाते हैं, परंतु अंदर की शरणागति जो सीता जी से हनुमान जी को मिली वो एक अपने आप में अलग थी। तो राम जी महाराज अब अयोध्या से पधार गए, लंका से पधार गए, अयोध्या में विराजमान रहने लगे। एक बार की बात है कि सीता जी सिंदूर से टीका कर रही थी और मांग भर रही थी, खास करके तो मांग भर रही थी। तो सीता जी से सरलता से हनुमान जी ने पूछा कि माँ ये क्या करती हो आप कि बेटा इससे पति का सुहाग पति का सौभाग्य बढ़ता है और पति का सौभाग्य होता है वो स्त्री का सौभाग्य होता है क्योंकि पति और पत्नी के अलग अलग भाग्य नहीं मानती पत्नी पत्नी जिस प्रकार से पति का सुखी अपना सुख मानती है पति का दुखी अपना दुख मानती है तो खास करके ऐसे समय में मुझे भगवान की याद आती है। भगवान की याद यूं आती है कि भगवान भी भक्त के सुख को अपना सुख मानते हैं भक्त के दुख को अपना दुख मानते हैं और भगत होता है वो भगवान के आनंद को ही अपना आनंद मानता है भगवान के दुख होता नहीं। तो मैं जो ये सिंदूर लगाती हूँ मांग में तो इस सिंदूर से हनुमान जी सुनो राम जी को बहुत प्रसन्नता होती है खुश होते हैं। तो हनुमान जी बड़े राजी हुए तब हनुमान जी ने वो सिंदूर का डिब्बा लिया जमीन पर पटका और सारे शरीर पर सिंदूर लगाया और सारे शरीर पर सिंदूर लगा करके राम जी के सामने गए। जिस समय हनुमान जी सिंदूर लगा रहे थे हनुमान जी खूब प्रसन्न होंगे कि अब भगवान प्रसन्न होंगे भगवान प्रसन्न होंगे। दूसरे बंदर थे वो हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगे कि देखो कैसे है आप बड़े बुद्धिमान कहलाते हो ये क्या करते हो कि मैं देखो तुमको प्रसन्न नहीं करना चाहता मैं तो एक भगवान को प्रसन्न करना चाहता था। तो सिंदूर लगाए हुए महल में गए और देख करके राम जी बड़े खुश हुए खूब खुश हुए। तो हनुमान जी के ऐसे सरल स्वभाव को देखकर भगवान ने कह दिया कि जो मंगलवार के दिन तुम्हारे सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इतने हनुमान जी भगवान के प्रसन्नता का ध्यान रखते थे। सब बंदर चले गए किष्किंधा चले गए विभीषण वगैरह लंका चले गए युद्ध के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद सब चले गए अपने अपने। हनुमान जी को कहा कि तुम जाओ हनुमान जी का मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो यहीं रहूंगा। हनुमान जी भगवान की खूब सेवा करते थे। तो तीनों भाइयों ने विचार किया कि देखो हनुमान जी ने वैसे भी राम जी की बहुत सेवा की है और हम लोग भी राम जी के भाई हैं हम लोगों को सेवा का मौका कम मिलता है तो सारी सेवा हनुमान ले लेता है तो अब हनुमान का यहां क्या काम। तो सीता जी से मिलकर के उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक की सारी सेवा अपने हाथ में ले ली तीनों भाइयों ने। ये भोजन कराएंगे ये स्नान कराएंगे ये अमुक काम करेंगे अमुक काम करेंगे। सीता जी ने कह करके देखो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी वो हनुमान के बिना खुश नहीं होंगे कि क्यों हम खूब अच्छी तरह से सेवा करेंगे फिर कि देखो एक भाव होता है हनुमान का एक अपना अलग भाव है आपके भाव में तो आपके भी कमी नहीं पर हनुमान का भाव है ना इनको बहुत अच्छा लगता है हनुमान की सेवा से इनका मन खुश होता है। यदि चलते हैं देखते हैं यदि होता है तो ठीक है नहीं होता है तो देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा। भगवान के पास ले गए लिस्ट भगवान ने देख करके पूरी लिस्ट देख करके कहा कि अच्छा इसमें हनुमान का नाम नहीं दिया हनुमान को कोई सेवा नहीं दी कि महाराज अब हनुमान की सेवा की जरूरत ही क्या है हनुमान जी तो अब किष्किंधा जाओ सुग्रीव को राज्य मिल गया सुग्रीव की सेवा में रहे। कहा कि वो हनुमान जाना चाहता है कि नहीं वो क्यों जाना चाहेगा वो तो नहीं जाना चाहता वो तो आपके ही रहना चाहता है आप चला जाए। भगवान ने कहा था तो भाई एक बात है जो मेरे पास आ जाता है मैं उसको भेजता नहीं हूं अपने आप चला जाए तो अलग बात है मैं नहीं कहता कि तू चला जाए। बैठा है तुम्हारे क्या के ठीक है महाराज। अब जो है सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली। सेवा में एक जम्बाई आती है, उबासी आती, उबासी आई राम जी को, उबासी आई। उबासी आने पर स्वयं को भी चुटकी बजानी चाहिए, स्वयं नहीं बजाए तो पास वाला है वो चुटकी बजाए। चुटकी क्यों बजाए? उबासी आती आलस्य से, और उसमें मुंह फाड़ते 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 कहीं मुंह अटक न जाए। चुटकी बजाने से यहाँ की नसें दबती, यहाँ की नसें दबने गए, यहाँ की नसों से संबंध है तो वो ऐसा से फटा नहीं रहता, फिर वो वापिस मुंह बंद हो सकता है। दूसरा बजाएगा तो उसका ध्यान उधर चुटकी में जाएगा। मान लो मुझे उबासी आई, इन्होंने चुटकी बजाई, मेरा ध्यान उधर जाएगा, उधर ध्यान जाते ही मेरा मुंह इतना नहीं खुल सकता, और खुद करेंगे तो यहाँ की नसों के साथ संबंध होने से मुंह पूरा नहीं खुलेगा। उबासी में पूरा मुंह खोलना भी नहीं चाहिए, उबासी में आवाज भी नहीं होनी चाहिए। उबासी आए तो ये छूत की बीमारी है, एक को आती दूसरे को उबासी आएगी, देख लेना मैं। जिसको भी उबासी आए उबासी करे तो राम जी ने उबासी ली, उबासी ली तो किसी ने चुटकी बजाई नहीं तो मुंह खुला रह गया। मुंह खुला रह गया तो सारे राज महल में हड़कंप मच गया कि अरे भगवान का मुंह खुला है, मुंह खुला है, मुंह खुला है, अब क्या करें क्या करें। यशोदा ये कौशल्या जी आई, सीता जी आई, सब घबरा गए। तो सब ये घबरा रहे थे ना, तो राम जी के महल के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सब घबरा के कैसे जा रहे हैं। तो कौशल्या जी सबसे ज्यादा घबराई, मां थी ना, मां का हृदय ऐसा होता है। मां कह रही हनुमान इधर आओ इधर आओ, क्या बात है माता जी, क्या बात है, क्या हो गया, क्या क्या हो गया, जाके राम लला को देखो तो सही। राम लला मुंह फटा हुआ, हनुमान जाके चुटकी बजाई, चुटकी बजा के राम जी हंसने लग गए और उदासी उनकी उबासी खत्म हो गई। उबासी खत्म होगी तो गुरु वशिष्ठ जी वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि अब हनुमान की सेवा आप लोग बिल्कुल मत हटाइए। तत्काल वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के समुपस्थित करके उनको सेवा का काम दिया गया। हनुमान जी ने कहा भाई देखो सेवा व्रति होते हैं तो ऐसे होते हैं। इस प्रकार हनुमान जी जैसा सेवा भाव किसी में भी नहीं था। भगवान ने भी कह दिया, माता जी ने भी कह दिया, सीता माता ने भी कह दिया कि भाई हनुमान आज से प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें ही दिया जाता है। सब आनंदित हो। और देखो एक हनुमान जी की विचित्र कथा सुनो। नारद जी ने एक बार काशी नरेश से कहा कि महाराज जाओ राम जी के दर्शन करो, राम जी को प्रणाम करो, राम जी के दर्शन से कल्याण होता है, जाओ तो शरीर मिलो तो सही, केवल अपने राज्य में ही पड़े रहते हो। तो काशी नरेश अयोध्या गए। उस दिन योग की बात थी कि राम जी विराजमान और उनके गुरुदेव विश्वामित्र जी पधारे हुए थे। तो गुरुदेव विराजमान, राम जी विराजमान, गुरुदेव खूब बढ़िया शिक्षा की बातें और जगत के कल्याण की बातें कर रहे थे। इतने में काशी नरेश आए। ध्यान से सुनिएगा, काशी नरेश ने आते राम जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके काशी नरेश बैठ गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र जी को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा कि मुझे प्रणाम किया ही नहीं, जबकि राम जी मुझे गुरु भाव से देखते हैं और ये मुझे अभी तक पीछे का क्षत्रिय मानता है। विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, फिर आप सभी जानते हो फिर वो खटपट हुई, ब्रह्मर्षि पदु लेना था उनको, फिर वे संत हो गए, गुरु हो गए, तपस्वी हो गए, भगवान के गुरु हो गए, तो कहा ये मेरे को पिछले जीवन में देख रहा है, बुरा लगा हुआ। तो राम जी से शिकायत की कि देखो महाराज, इसने सभा के अंदर हमको नमस्कार तक नहीं किया है, इससे मेरा अपमान हुआ, आपके सामने हुआ है और आपने देखा है और आपने कुछ कहा ही नहीं इसको। भगवान कहने लगे कि देखो बात तो आपकी बिल्कुल सही, सभा में मैं क्या बोलता, तो भी कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, प्रतिज्ञा करूंगा, ये तीन बाण हैं, इन तीन बाणों से मैं आज जो है काशी नरेश का वध करूंगा। तीन बाण निकाल के अलग रख दिए, एक दो तीन, आज काशी नरेश मेरे बाण से मारा जाएगा, प्रतिज्ञा करके कहता हूं। और राम जी प्रतिज्ञा कर, काशी नरेश के होश उठ गए, उसने सुना कि आज मुझे तीन बाणों से मारेंगे भगवान, और राम जी की प्रतिज्ञा, कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा होती तो फिर भी कोई बात नहीं, राम जी की प्रतिज्ञा है, राम तो रामो फिर न भाषते, राम एक बात जो बोल दिया दोबारा उसमें संशोधन नहीं करता है। अब क्या क्या तो घबराते घबराते गए नारद जी के पास, राजा काशी नरेश, नारद जी से कहा, नारद जी मैं मेरे घर में ही बैठा ठीक था, आज आपने राम जी के पास भेजा, आफत कर दी, बताओ कि क्या हुआ, कि विश्वामित्र जी को मैं राजा समझा था, मैंने कहा मैं हूं ऐसे ही है, इनको क्या प्रणाम कर, राम जी को तो मैंने भगवान समझा। तो नारद जी ने कहा कि भाई देखो, संत महापुरुषों को पिछले रूप में नहीं देखना चाहिए, लोग पूछते हैं संत कौन सी जाति का है, इसका कौन कुल है, इसके कौन क्या है, ये नहीं देखने चाहिए। वो जिस प्रकार से आदमी मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो पिछली जाति उसकी खत्म हो जाती है, ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वे संत आश्रम में चले जाते हैं तो फिर वे अपनी पिछली जातवाद का परिचय नहीं दे दिया करते, पहले तो वो देते नहीं, और जो जानते हो तो उनको उस दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। गलती तो है आपकी कि महाराज उन्होंने मुझे मारने की प्रतिज्ञा कर दी, अब मुझे बचाओ, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा एक उपाय, हनुमान जी की जो माता जी अंजना जी है उनके चरणों में जाकर शीश नवाना, और पहले मत बोलना, हनुमान जी की माता जी है वो बड़ी दयालु, पहले उनको बातों में ले लेना कि देखो इतना तो मुझे आता नहीं है, अब आप ही मेरे साथ चलो। चलो नारद जी ने कहा कि देखो मैं तो दूर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे देख करके अंजना माता जी मुझे कहेंगे कि आप ही इसका रास्ता बताओ, ठीक नहीं लगेगा, मैं दूर रहूंगा, आप जाकर के अंजना माता से बोलना कि माता जी मैं बहुत दुखी होकर आपके पास आया हूं। एक तो माताओं बहनों का हृदय यूं ही कोमल होता है, और कोई उनके सामने दुखी चला जाता है फिर पूछो ही मत, दुखी आदमी से ज्यादा दुखी वे करने लग जाते हैं, उनके अंदर कृपा भाव रहता है। फिर हनुमान जी की मां है, तो काशी नरेश गए, माता अंजनी के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगे फूट फूट के, कह रहे बात क्या है नरेश, बात क्या है बताओ, क्या बताओ क्या बताओ, आप कोई मुझे आश्वासन दे तो बताओ। कहने उन पूछो क्या बात है कि आज मैंने राम जी की सभा में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया तो राम जी ने तीन बाण से मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है, एक दो तीन, तीन बाण निकाल भी लिए उन्होंने अपने तर्क से, निकाल के रख लिया गया, अभी तीन बाण से आज इसको मारेंगे, मेरे प्राण बचाओ, प्राण तो सभी को प्रिय लगते हैं, और अब आपने तो मुझे पूछ ही लिया कि बताओ तुम्हारी क्या विपत्ति है, हम उससे तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब रक्षा करो महाराज। इतने में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो अंजना ने कहा कि बेटा ये आफत आ गई राजा के, इसकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा माता जी, राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब क्या करूं, अब कुछ भी करो मुझे पता नहीं, मैंने तो इसको वचन दे दिया। आपने वचन दे दिया माता जी, आपके वचनों को भी मैं कैसे खाली करूं, आपने आज्ञा दी मुझे। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, कुछ भी हो तुम बुद्धिमान हो, करो कोई उपाय, करो, मरना नहीं चाहिए राम जी का, राम जी के बाणों से। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, एक राम जी से बड़ी चीज और है, उसकी शरण ले लो। काशी नरेश ने कहा, हनुमान जी आप तो इतने बुद्धिमान हो, राम जी से भी बड़ा किसी को मानते हो क्या? मानता हूं। किसको? राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, तुम राम जी के नाम की शरण ले लो। हाँ, तुम राम 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 ये करते रहो बस। तो सरयू नदी के किनारे जाकर के नदी में डूब, कमर तक डूब करके राम 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 ऐसे करने लगे। उधर भगवान आए, उन्होंने बाण छोड़ा, वो बाण पास में जाकर के वापस लौट आया। भगवान ने बाण से कहा, क्या हुआ तू वापस कैसे लौट आया? मेरी गति नहीं ली। क्यों? कि आपका नाम लेता है। अच्छा, उसको रख दिया। दूसरा बाण, इस बाण हुआ तू जा, वो गया। हनुमान जी ने उसको सिखा दिया था पहले ही, पहला नाम, पहला बाण आए ना तो राम राम राम, दूसरा बाण आए तो जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम करना, और तीसरा बाण आए तो जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय हनुमान ऐसे बोल देना। तो एक बाण तो चला गया, उसको विश्वास हो गया काशी नरेश को, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। दूसरा बाण आया तो जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम करने लगा, तो वो बाण उनके पास ही नहीं गया, वो बाण जा आवाज वहीं से लौट गया। भगवान कह रहे ये क्या हुआ, तू पास ही नहीं गया उसके, कि महाराज वो आपका नाम और सीता का नाम लेता है, उसके पास हम क्या करें जाके, हम तो नहीं जा सकते उसके पास। वापिस लौट आया। अब तीसरे बाण को भगवान ने कस करके लगाया, तू जा मेरा काम कर। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान, इस मंत्र का जाप करने लगे। अब तो वो बाण है वो उनके धनुष से बाहर जावे ही नहीं, धनुष की चिपक गया वो बाण, वो धनुष के चिपक गया जावे नहीं। क्या बात हो गई कि साहब आपका नाम, सीता माता का नाम, हनुमान का नाम, बताओ मैं कैसे मारूं उसको। तीनों बाणों की दशा देगी, भगवान बड़े खुश हो गए और उसको बुलाया, और विश्वामित्र जी वहीं खड़े थे। काशी नरेश को बुला के कहा कि काशी नरेश देखो, तुम्हारे पास ये नाम की शक्ति हमारी शक्ति से भी बढ़कर पहुंच गई, किसने बताया तुमको, सच्ची सच्ची बताओ। काशी नरेश ने कह दिया, महाराज ऐसे में अंजना माँ के पास गया नारद जी के कहने से, फिर हनुमान जी वहां आए थे, हनुमान जी ने बताया, कोई बात नहीं, पर मेरे गुरु का अपमान है वो तो है ही ना। उसी समय विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज यदि आपके इस बाण से ऐसा आपका भगत मारा जाता तो इस संसार में आपकी बड़ी अपकीर्ति होती और मेरी भी बड़ी अपकीर्ति होती। मेरी अपकीर्ति होती कि देखो विश्वामित्र मान बड़ाई का इतना लालची कि नमस्कार नहीं करने पर उसको राम जी के बाण से उसकी मृत्यु करवाई, मेरी बड़ी बेइज्जती होती। आपकी भी होती कि बेकसूर को एक प्रणाम ही तो नहीं किया था, बाण मारने की क्या प्रतिज्ञा की, आपके नाम ने महाराज आज आपको भी और हमको भी सब कोई बचा लिया। जितने वहां ऋषि मुनि मंत्री वगैरह सब थे, सब ने कह दिया महाराज हम आज से हम लोग आपके नाम का आपसे भी बड़ा विलक्षण प्रभाव देखेंगे। तो ये हनुमान जी ने वहां पर ऐसा ही किया। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज को सीता जी भोजन करा रहे थे, बेटा भोजन कर। अब भोजन करने लगे, एक तो माँ भोजन कराए बच्चे को, यूं ही ज्यादा भोजन करता है, बच्चे की खुराक बढ़ जाती है माँ के भोजन कराने से। और आज कुछ हनुमान जी को करना ही कुछ ऐसा ही था, खूब खाए हुए, खूब खाए। भगवान के यहाँ रसोई के अंदर जो कुछ भोजन था सब चौका खाली होता चला गया। जानकी जी ने देखा कि क्या करें, ये मना ही नहीं करता है। तो फिर जानकी जी ने हनुमान को गौर से देखा तो हनुमान जी शंकर की तरह प्रतीत हुए, साक्षात शंकर के दर्शन हुए। शंकर के दर्शन हुए, देखा कि अब ये तो शंकर तो सब संसार को चाटने वाले। तब उन्होंने सिंदूर लेकर के और हनुमान जी के यहां सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख दिया। लिखते ही बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, मां हम तृप्त हो गए। सीता जी ने कहा कि तू तो तृप्त हुआ कि नहीं हुआ, मैं तेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति का दर्शन करके बड़ी तृप्त हो गई, बड़ी तृप्त हो गई। और सुनो हनुमान जी की बात। एक बार द्रौपदी नदी के पास में स्नान कर रही थी तो उसको एक सोने का फूल दिया, सोने का फूल। वो एक फूल वहां पर तिर रहा था तो उसने वो सोने का फूल ले लिया, स्नान वगैरह करके और अपने पतियों के पास आई। ऐसा सुंदर फूल देखा, सबने कहा कहां से लाई आप, कि तो नदी में स्नान करने गई थी वहां मुझे मिला। मैं चाहती हूं ऐसे मुझे 5 फूल मिलने चाहिए। तो किसी से पूछा नहीं कहां मिलते। हाँ पूछा था मैंने, वहां ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति भीमसेन है ना, बस वो ला सकता है। गंधमादन के पर्वत के पीछे उधर कोई नदी है, उसमें से बह करके ये आया है, वहां उधर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो भीमसेन से कहा, भीमसेन जी आप जाओ, ठीक है। भीमसेन जी उस कमल को लेने के लिए बद्रीनारायण गए, बद्रीनारायण से आगे गए, गंधमादन पर्वत के उधर जाने में एक इतना सा संकड़ा सा रास्ता था। तो वहां पर एक कदली वन था, कदली वन, कदली वन माने केलों का वन। ये अपन खाते ना केला, ऐसा नहीं था, बहुत दिव्य कदली वन था। उसके फल देवता लोग खाते थे। तो उस कदली वन में से होकर के और रास्ता जाता था, और वहां जो संकड़ा रास्ता था, पहले तो ये कदली वन में गए, ये भीमसेन जी, भीमसेन जी खूब खा लिए अपना केला, दिव्य फल थे। और जो वो भीमसेन केला खाए, भीमसेन के शरीर में तत्काल बल बढ़े, स्फूर्ति आए, वही बलशाली तो थे ही, और उनमें बल आए। कहा कि मैं तो बड़े विचित्र स्थान में पहुंच गया, बड़ा अच्छा लगा उनको। और आगे गए तो वहां पर एक दो पर्वतों के बीच में संकुड़ा एक रास्ता था, वहां पर एक बंदर को देखा, बंदर बीच में बैठा हुआ। हनुमान जी ने जाते गए, रे कौन है, उठ यहां से, रास्ता दे। भैया बुड्ढा आदमी, बीमार आदमी, तुम ऐसे निकल जाओ ना, ऐसे निकल जाओ, मालूम है मेरे साथ कौन रहते हैं, मेरे साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण रहते हैं। उन कृष्ण ने हमको बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्राणी मात्र के अंदर रहता हूं, चाहे कोई छोटे से छोटा प्राणी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा प्राणी हो, सब प्राणियों में रहता हूं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज सब प्राणियों में आप ऐसे तो नहीं दिखते हो जैसे अभी हमको दिख रहे हो? क्या ऐसे नहीं दिखते, मेरे एक रूप थोड़े ही। सब प्राणियों में देखना हो तो उनमें जो आत्मा है वो आत्मा मेरा रूप है, और ये आत्मा आंखों से नहीं दिखती है, आत्मा का तो अनुभव होता है। तो ये भाव होता है कि जो आत्मा का अनुभव यहां कर रहा हूं वो आत्मा सब में विराजमान है। इस दृष्टि से मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूं। तो तेरे अंदर भी भगवान है, तुझे लांग के जाऊंगा ये भगवान को लांगने के समान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता, तू मुझे रास्ता दे दे। भैया मैं रोगी बूढ़ा आदमी कैसे रास्ता दे, मेरे से सिरका ही नहीं जाता। अरे तुझे पता नहीं, तू मुझे कहता है पूंछ उठाओ एक तरफ कर दो, मैं कौन हूं मालूम है? तेरे ही बंदर जाति में एक हनुमान नाम का बंदर हुआ था, कौन बोलता है? भीमसेन। तुम्हारी जाति में एक हनुमान नाम का बंदर हुआ था, सुना है नाम? हनुमान जी में बहुत होते हैं बंदर, किस किस का कौन कौन सुने, कौन किस किस को जाने। मैं उस हनुमान का भाई हूं, छोटा भाई। अरे तुम उस हनुमान को नहीं जानते, उसके कुल में तुमने जन्म लिया, सो को सो ये सो योजन समुद्र को अकेला पार कर गया, उस हनुमान को तुम नहीं जानते जो तुम्हारे कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला है? कौन है हनुमान? छोड़ो यार, तुम क्यों दूसरी चर्चा करते हो? मेरा आगे बुखार से सिर दुख रहा है और उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। तुमको यदि रास्ता लेना है मुझे अलग कर दो, कि तू मेरे को जानता नहीं, मैं भीमसेन हूं, मेरा जो अपमान करता है ना तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, तू अपना आप ही अलग हो जा। कि भैया मैं तो नहीं अलग हो सकता, तू मेरे को अलग घसीट करके अलग कर दे। इतना क्रोध आया हनुमान जी को, एक बंदर मेरे से इतनी माथापच्ची करने का साहस करता है, उन्होंने पूंछ उठाई, पूंछ उठाए तो पूंछ उसके दब गई, हाथ पूंछ ने दबाया उसके हाथ को, वो निकले नहीं। उठाओ उठाओ तुम हनुमान के भाई हो ना, उठाओ मेरे को घसीटो, उठाओ ना, मेरे से उठा नहीं जाता, तुम उठाओ। पूंछ को ही नहीं उठा सके, तुम पूंछ को ही नहीं उठा सके। भीमसेन गौर से देखने लगा, दिखता तो छोटा सा है और इतनी सी पूंछ है इसकी, बोलता बड़े विचित्र ढंग से है, उठाओ नहीं उठा सके साहब, नहीं उठा सके। तो फिर वो हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गए कि आप कौन है, सामान्य बंदर नहीं है, आज मेरा अभिमान आपने दूर कर दिया, कृपा करके अपना पूर्ण परिचय दिलाइए। तब हनुमान जी ने कहा कि परिचय तो तुमने पहले ही बता दिया, तब मैं क्या बताऊं? तो आप हनुमान हो, आप हनुमान जी हो, मेरे बड़े भाई। हनुमान जी मुस्कुराए, गया तेरा बड़ा भाई है, इतने से हो आप, छोटे से, आपसे ज्यादा तो मैं हूं। अच्छा यदि आप हनुमान जी हो तो समुद्र को लांघते समय में सब बंदरों के बीच में आपने जो विशाल स्वरूप बनाया था, सुनते ही भय पर्वताकारा, वो रूप मेरे को दिखाओ तो मुझे विश्वास हो। हनुमान जी का नहीं दिखाता, तुम उसको देखने के अधिकारी नहीं, देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। हनुमान जी ने, भीमसेन जी ने कहा कि कैसी श्रद्धा बताऊं, मुझे विश्वास हो जाए, आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरे मन में आपके उस दर्शन की बड़ी इच्छा है। क्यों क्यों इच्छा है? समझ में, कई बार सोचता था कि मुझे कभी मेरे बड़े भाई मिले, उनसे कहूंगा कि आपने ऐसा रूप कैसे बनाया था, कभी मुझे भी युद्ध करना पड़े तो इतना बड़ा रूप बना करके मैं योद्धाओं से लड़ूं। हनुमान जी ने कहा भीमसेन, मैंने लड़ते समय में विशाल रूप नहीं बढ़ाया, मैंने सीता जी के खोज के लिए भगवान की आज्ञा से इतना रूप बनाया था, लड़ाई में मैंने बड़ा रूप नहीं बनाया कि मेरे को एक बार वो रूप दिखाइए। तब हनुमान जी वहां बड़े होते होते बहुत विशाल रूप होते, ज्यो ज्यो वो अपना रूप दिखाए त्यों त्यों हनुमान जो भीमसेन की आंखों में प्रेम से पानी आए, आप मेरे बड़े भाई, विशाल रूप दिखा। और उसके बाद उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम वो पांच फूल लेने जा रहे हो ना, वो पांच फूल तुमको यहीं पास में मिल जाएंगे। और वो पांच फूल उन्होंने ले लिए और वे वापस आ गए, हनुमान जी के दर्शन होने। ऐसी इससे मिलती जुलती एक कथा और आती है, ऋषि मुनियों को रोज भोजन कराते थे ये पांडव लोग जंगल में भी, क्योंकि उनको एक बटलोई मिल गई थी, सूर्य भगवान ने बटलोई दी थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे इसमें से तुम कितना ही भोजन करते जाना, कितना ही भोजन करते जाना, तुम्हारे भोजन की कमी नहीं आएगी। तो रोज ऋषि मुनियों को बुलाते थे, ऋषि मुनियों को बुलाते और ये पुरुष थे कौन, भीमसेन। पर भीमसेन थोड़ा कड़क आदमी था, देखो भोजन तो करवा चाहे जितना करो, करो चाहे मण भर, छोड़ो मत कण भर, झूठा मत छोड़ना, कोई झूठा छोड़ना हमको अच्छा नहीं लगता है। भगवान कृष्ण ने सुन लिया, अरे भोजन को बुलाए भी और कहने लगा कि यदि आपने झूठा छोड़ दिया तो ये सारा भोजन इकट्ठा करके आपके चोटी में बांध दूंगा, पीछे जहां भी लोग जाएंगे कहेंगे झूठा छोड़ने वाला है, झूठा छोड़ने वाला है, फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं। अब भीम के डर के मारे बेचारे ऋषि मुनि थोड़ा थोड़ा भोजन करें, जरा सा यदि ऊंटा हो गया तो चोटी के बांध देगा, तो ऋषि मुनि बिचारे दुबले पतले होने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बात क्या है, भोजन भी करते हैं डरे हुए भोजन करते हैं, तो भीमसेन को थोड़ा घमंड है, इसका घमंड नष्ट करवाना चाहिए, कौन नष्ट करे, हनुमान जी महाराज से घमंड नष्ट हो सकता है, बड़े से ही छोटे का घमंड नष्ट होगा। तब उन्होंने कहा अरे भीमसेन, हाँ महाराज, अरे एक काम करो ना, क्या उधर गंधमादन पर्वत की तरफ बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, जरा उनको भोजन का निमंत्रण दो ना। अभी गए भीमसेन जी, गए वही हनुमान जी वाला प्रसंग आ गया, हनुमान जी ने कहा कि भाई किधर जाते हो, कौन हो, कुंती पुत्र भीम हूं, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जाना है, तुम बंदर हमारा रास्ता कैसे रोक सकते हो, मैं उस हनुमान का भाई हूं जिसका रास्ता कालनेमी ने रोका था, फिर कालनेमी की क्या दशा हुई थी तुम जानते हो क्या, उस बंदर को वही प्रश्न जो पहले हुआ हुई, थोड़ा बस इतना ही भेद है कि वो फूल लेने के लिए गए या ऋषि मुनियों को लेने के लिए गए थे। हनुमान जी अड़ करके बैठ गए थे, तब फिर ये सारी बातें हुई और सब प्रकार से इनका जो है घमंड दूर हो गया। कोई बातें हो रही है, कोई बात हो रही है, मोबाइल से बात मत करो, कोई बड़ी मुश्किल से अच्छी अच्छी कथाओं को सुनने का मौका मिलता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज जी रामावतार में आपने कितने पर्वतों को उठवाया, कितने पर्वतों को लेकर लिए, पुल बनवाया, ये किया वो किया, आपने इतना क्यों किया, आप बाणों से पुल नहीं बना सकते थे क्या, इतना इतना आपने लोगों को परेशान करवाया। भगवान ने कहा कि देखो तुम बाड़ों से पुल बना सकते हो क्या?
अभी बना दो
और ऐसे पुल बनाओ उनके ऊपर चाहे कितने ही सेना चली जाए, वो हमारे बाड़ ऐसे स्थिर हो जाएंगे वो किसी प्रकार हिल नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा तुम बनाओ। तो एक समुद्र जितना तो नहीं लेकिन हाँ समुद्र से कुछ कम बहुत बड़ा विशाल जलाशय था, उसके इसके ऊपर पुल बना दो। तो बाढ़ फेंकता गया, अरे थोड़ी देर में पुल बना दिया। भगवान कृष्ण ने वो ध्यान लगा के चुटकी बजाई, हनुमान जी आ गए। काहे हनुमान आओ, बड़े प्रेम से मिले हनुमान जी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इस समय के जैसे तुम मेरे अपने खास हो ना, रामावतार में ये मेरा खास था। अर्जुन गए, अर्जुन ने जाकर हनुमान जी के चरण छूए, प्रणाम किया। नाम तो हमने कई बार आपका सुना था, दर्शन सुहास पहली बार ही। हनुमान जी को आज आपने दर्शन दिलवाकर बड़ी कृपा की। प्रभु हनुमान जी से क्या काम है? वह हनुमान जी से यही काम है कि इनको कहेंगे आप इस पुल के ऊपर थोड़ा चलो तो सही। हनुमान इस पुल के ऊपर चलो, ये हमारे अर्जुन ने बड़े युद्ध कौशल, बड़े अच्छे अच्छे बाण लगा करके बड़ी कुशलता से बनाया है, जरा तुम इसका उद्घाटन कर दो चल कर। तो हनुमान जी ने जो ही पैर अपना एक चरण रखा, चढ़ 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 चूटने लगे, नीचे बैठ गए। अब नीचे बैठने लग गया तो थोड़ी देर में भगवान के पीठ में खून आया है। अर्जुन ने कहा महाराज जी खून कैसे आया है, पीठ में खून कैसे आया? क्या अर्जुन क्या बताऊं, मुझे हनुमान का भी मान रखना है और तेरा भी मान रखना है। तूने कहा कि ये मेरे बाण किसी प्रकार से हिलने वाले नहीं है, तो हनुमान का पैर रखना व्यर्थ हो जाता। तो हनुमान के पैर रखते ही ये बाण नीचे गए और पूरे नीचे इसलिए नहीं गए कि मैंने कछुए के रूप में इन बाणों को धारण किया तो बाणों की नोक मेरे यहां लग गई, उसका खून आ रहा है। और यदि मैं वहां कछुआ का रूप बना करके तेरे बाणों को नहीं सहन करता तो ये हनुमान तो पूरी ताकत से चल रहा था, वो रसातल में चला जाता। अब एक बंदर से तेरे ये दशा है तो औरों की क्या होगी? प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम किया अर्जुन ने और हनुमान जी वहां से अदृश्य हो गए। एक दिन ये अर्जुन है ये स्वयं समुद्र के किनारे घूम रहे थे और बहुत बाण चलाते इधर उधर, अपना शस्त्र कौशल है उसको याद कर रहे थे। तो धनुष कोटि नाम का जो तीर्थ है वहां पर मध्याह्न के समय में वहां पर रथ पर बैठ करके खूब आनंद से घूम रहे थे अर्जुन। उसी समय में आकाश से हनुमान जी आए, राम 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 करते करते आए। और हनुमान ने अर्जुन ने पूछा कि राम राम करने वाले आप कौन हो? तो मैं तो उनका दास हनुमान हूं। अच्छा अच्छा हनुमान जी आप तो समुद्र को लांग गए थे ऐसा सुना, बाकी लोगों ने यहां पर पुल बनाया, ये पुल बना के क्या किया? ये कि इतना परिश्रम करना पड़ा, तुम्हारे यहां कोई बाण चलाने वाले नहीं थे क्या? अजी हमारी सेना इतनी ज्यादा थी कि वो बाणों से टूट जाती, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाण से यदि रामचंद्र जी पुल बनाते तो ऐसा नहीं होता। और यदि बंदरों के भार से पुल टूट जाए तो फिर धनुर्धारी हुआ ही क्या? मैं पुल बनाता हूं पुल बनाया, हनुमान जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसको दबा दिया। अच्छा, उससे पहले एक शर्त ली, शर्त ये हुई अर्जुन ने कहा कि देखो मैं पुल बनाता हूं, यदि तुम्हारे पैर रखने से वो टूट जाता है तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, मर जाऊंगा। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे अंगूठे से तुम्हारा पुल नहीं टूटेगा तो मैं तुम्हारी युद्ध में सहायता करूंगा और जिस रथ पर तुम बैठोगे उसके ऊपर मैं बैठा रहूंगा। तो वो पुल टूट गया, पुल टूट गया तो अर्जुन का मुंह उतर गया। अब अर्जुन वहां चिता वगैरह बनाने लगा, सब जगह हायतराई मची, हायतराई मची तो भगवान ने देखा कि अर्जुन तो अपनी बात का पक्का है। तो भगवान कृष्ण वहां पर एक छोटे से बच्चे बनकर आए, बटुकू, आकर कहने लगे चिता क्यों बना रहे हो? अरे हाथ, अर्जुन बोलता है हाथ, छोटा सा बच्चा मेरे से पूछता है। अपनी प्रतिज्ञा के लिए क्षत्रिय अपने तलवार से अपना सिर उतारने में गौरव समझते हैं, बालक तुम क्या जानो हमारी क्या बात है? क्या नहीं नहीं, मैं चिता नहीं बनाने दूंगा, मैं पूछूंगा कि तुम ये किस बात को लेकर के चिता बना रहे हो, मेरे से क्या पूछते हैं? ये बंदर रहा, इससे पूछो। हनुमान जी से पूछा कि वानर तुम दोनों कौन हो? भगवान बोल रहे हैं तुम दोनों कौन हो, क्या बात है? कहा कि देखो ब्राह्मण बालक बटुक, हम दोनों में ये शर्त हुई थी। ये क्या शर्त हुई? यदि ये पुल बनाए और टूट जाए तो ये चिता में प्रवेश करेगा, और यदि न टूटे तो मैं इसके युद्ध के अंदर ध्वजा में जाकर बैठूंगा। तो मेरे पैर से इसका पुल टूट गया, अब ये चिता में जा रहा है, हम क्या क्या क्या? किसने प्रतिज्ञा की? इसने प्रतिज्ञा की। किसके सामने की? मेरे सामने की। अरे तुम भी तो प्रतिज्ञा करने वाले हो और ये भी प्रतिज्ञा करने वाले, कोई साक्षी तो चाहिए। किसके सामने की? प्रमाण क्या है इसका? प्रमाण लाओ। यहां तो कोई नहीं था, हम दो ही थे, दो की प्रतिज्ञा मानी नहीं जाती। प्रतिज्ञा के अंदर तीसरा साक्षी होना चाहिए, साक्षी अंत में निर्णय देता है कि ना जाओ चिता बनाओ, तब चिता बनाई जाती है। ये चिता बनाने को आत्महत्या करने के समान है, हम आत्महत्या नहीं करने देंगे। कोई भी पंचायती होती है उसमें एक तटस्थ आदमी रहता है, बीच का आदमी रहता है, उसके सामने तुम्हारे सामने कोई नहीं, तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर ली? वो प्रतिज्ञा मानी नहीं जाती, वो शर्त भी नहीं मानी जाती। लिखापटी है, लिखापटी भी नहीं है। अर्जुन ने कहा कि क्षत्रिय का जो वचन होता है वो लिखापटी और साक्षी से बढ़कर होता है, नहीं होता कोई कोई जीवित साक्षी चाहिए। अच्छा, दशरथ जी ने केकई को वरदान दिया तो साक्षी थे ना, सारी अयोध्या साक्षी है, तब राम वन में गए ना, गुरुजनों के सामने गए ना, और जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि मेरा कोई धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा तो सब लोगों के सामने की ना, अकेले कोई प्रतिज्ञा की हो तो बताओ। इसलिए तुम दोनों का ये प्रतिज्ञा का जो खेल है वो तो खत्म, अब नए ढंग से प्रतिज्ञा करोगे। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान। अब नए ढंग से प्रतिज्ञा की, अच्छा ठीक है, अब हम आपके तटस्थ हैं, बीच के हैं, पंच हैं, हम आपका काम ठीक करेंगे। अब हम बोलते हैं यदि अर्जुन बाण बनाता है, बाण से पुल बनाता है और यदि वो टूट जाता है तो अर्जुन चिता में प्रवेश करेगा, और नहीं टूटता है तो ये बंदर अर्जुन के रथ में जाकर ध्वजा में बैठे थे। ठीक है, हम पंच हैं। अर्जुन ने दोबारा पुल बनाया तो भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र था वो उस पुल के नीचे रख दिया, किसी को पता नहीं चला, दोनों गई। और हनुमान जी ने आपकी बात जोर से यूं पैर रखा, वो इतना सा भी नहीं हिला, धनुष बाण था वो हिला नहीं, ज्यों का त्यों बाण। हनुमान जी खूब चले, अच्छे कूदे, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने पूरा जोर लगाया, मान जी बात क्या है, वही अर्जुन है, वही बाण है। और अभी थोड़ी देर पहले तो ये टूट गया था पुल, अब बिल्कुल नहीं टूटता, हिलता भी नहीं है, बात क्या है, ये बटु कौन है। हनुमान जी आए तो देखने लगे कि जी आप कौन है, आप कोई साधारण बटुक नहीं है, कोई न कोई विलक्षण है। बटुक ने कहा, भाई हम तो आपका निर्णय करने के लिए आए। तो जो हनुमान जी के अंदर विशेष श्रद्धा हुई और अपने अंदर राम जी का ध्यान करके भी देखने लगे, अरे साक्षात भगवान कृष्ण पधारे हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे त्रेता के अंदर ये कहा था कि हनुमान द्वापर युग के अंदर जब मेरा अवतार होगा तो मैं तुम्हें कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा, आज आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अर्जुन भी भगवान को देखकर बड़े आनंदित हुए कि महाराज मैं कैसा खोटा आदमी, चाहे जैसी प्रतिज्ञा कर लेता हूं और आप मेरे कैसे खास अपने कि आप मुझे जगह जगह पर बचाते रहते हो। तब हनुमान जी भी खुश हो गए और अर्जुन भी खुश हो गए। तो देखो हनुमान जी को बैठना तो चाहिए था अर्जुन के रथ में, भीमसेन के रथ में, लेकिन इस प्रतिज्ञा में हनुमान जी रहे अर्जुन के रथ में। अर्जुन में रथ में इसीलिए कि कृष्ण के बराबर दर्शन होते जाए, ये खास कारण था। भीमसेन से कहा था हनुमान जी ने कि तेरे साथ मैं मिलकर के युद्ध करूंगा, तो कहा कि मेरे साथ मिलकर के युद्ध करोगे तब तो संभवतः पांडवों की कीर्ति बढ़ेगी नहीं। हनुमान जी आप एक काम करना, मैं जिस समय युद्ध में जोर से किलकारी लगाऊं ना, उस किलकारी में आप उसमें खूब जोश भर देना, और मैं जिस समय युद्ध करने लगूं तो मेरे अंदर आप ताकत के रूप में प्रवेश करना, ताकि ये योद्धा उस आवाज से डर जाए, मेरे बल से डर जाए, इतना काम कर देना। तभी तो भीमसेन हाथी उठा उठा के फेंक देते युद्ध के अंदर, हाथियों को उठाकर, और कोई फर्क नहीं पड़े उसके। एक दिन भगवान ने देखा, बस एक कथा और है हनुमान जी की। एक दिन हनुमान जी ने भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे द्वारिका में मेरे महल का वातावरण बड़ा गंदा हो रहा है, घमंड हो रहा है सबसे। सत्यभामा जी को घमंड हो रहा है कि मेरे समान सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सुदर्शन चक्र को घमंड हो रहा है कि मेरे समान किसी का भी तेज नहीं है। और गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा कोई दूसरा वेगशाली भगवान के पास कोई नहीं है। भगवान ने देखा कि भाई मेरे और अभिमान के तो कभी आपस में मेल होता ही नहीं, अभिमान भगवान को नहीं सुहा था, अभिमानत बेसिक स्वाद, क्योंकि संतों ने भजन का ही अभिमान कर लिया कि मैं इतना भजन करता हूं, मैं इतना भजन करता हूं। अब भगवान ने जैसे भी संकेत किया, आगे हनुमान जी बगीचे में आए, खूब फल तोड़ने लगे, टहनियां तोड़ने लगे, अब बंदर जो उत्पात करे सुख करने लगे, और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए वो फल खाने लगे। तो उस वन के जंगल के रक्षक थे, बगीचे के रक्षक थे, उन्होंने जाकर शिकायत की भगवान से कि महाराज एक बड़ा विचित्र बंदर आया है और वो यूं टहनियां तोड़ता है, फल खाता है, किसी की मानता नहीं है, कहते हैं तो वो फलों की वापिस हमारे ऊपर चोट करता है, बड़ा बलशाली, हमारे तो कब्जे का नहीं। अरे गरुड़, जाओ ना, वो कौन बंदर है उसको लाओ। गरुड़ जी अभी जाता हूं महाराज, देखो उसको तुम लेके ही आना। वो महाराज पकड़ में नहीं आए, तभी हो तुम कैसे भी हो तुम उछल करके पकड़ लेना, वो ही नहीं छलांग मार दे तुम उठ करके पकड़ लेना। ठीक है, पकड़ने के लिए भेज दिया उसे। वहां गए बगीचे में, ए बानर ये बगीचा नष्ट करते हो, सारे बंचरों को तुमने मार के भगा दिया, सारे फलों को तुम तोड़ तोड़ के बिखेर रहे हो, बड़े अन्यायी हो, तुझे दंड मिलेगा। हनुमान जी का देखो हमारे काम में आज तक किसी ने बाधा पहुंचाई नहीं, कोई हमको कुछ कहने वाला मिला नहीं, तेरे में इतनी क्या ताकत है तू मुझे बोल रहा है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं सारे देवताओं को परास्त करके अपने पुरुषार्थ से अमृत बुलाने वाला गरुड़ हूं। मेरे ऊपर ही विराजमान होकर के भगवान यत्र तत्र सर्वत्र पधार करके अपने संहार की लीला करते हैं, मैं वो गरुड़ हूं। मेरे भय से नागराज सब रसातल के नीचे जाकर छिपे हुए बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता हो। वो सैकड़ों मूर्खों में महामूर्ख है जो अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है। बड़ा दुर्भाग्य मेरा कि आज तू मेरे सामने खड़ा है अपनी बड़ाई करता है, शर्म नहीं आती? अरे तू गरुड़ को ललकारता है, तू मरने के लिए चला है क्या? इस प्रकार से खूब फटकारने लगे। हनुमान जी ने कहा देखो भाई, हम नीति की बात कहेंगे, शास्त्र की बात कहेंगे, संतों की बात कहेंगे, हे गरुड़ आप जो कुछ भी होंगे, लेकिन अपने मुंह से तुम ये बात कहकर अपनी गरिमा खो रहे हो। साक्षात भगवान के वाहन यदि हो भी तो भी तुम अपने मुंह से क्यों बोलो? चले जाओ अपना काम करो। तुमको भगवान कृष्ण ने बुलाया है और मैं तुमको साथ में लेकर के जाऊंगा। अरे भैया कुछ नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अब बुलाए मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं तुम कैसे जाओगे? मैं वेग शासी हूं, मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं चलता, बोलो क्या करोगे? अब वो आए हनुमान जी पर चौंच मारे। हनुमान जी कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे हाथी पर मक्खी बैठे तो क्या फर्क पड़े, ऐसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा हनुमान जी ने एक दो पूंछ की लपेट में उसको रख लिया और पूंछ लपेट करके गरुड़ जी को क्यों बांधा? गरुड़ जी हूं सिसकने लग गए, सी सी करने लग गए, गरुड़ जी को बांध दिया, चले आए। इधर सुदर्शन चक्र को भगवान ने पैर पर रख दिया था, तो मैंने सुना है कि एक बंदर आया हुआ है, बड़ा उत्पाती है, किसी को रोके रुकता ही नहीं, हो सकता है वो चंचलता करते 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 अपने दरवाजे पर ही आ जाए, उसको अंदर मत आने दे। जो आए मेरे बिना कौन यहां आ सकता है? हाँ बस यही। इतने में हनुमान जी आए, रोक दिया। कौन हो तुम? मुझे भगवान ने बुलाया है, कृष्ण भगवान ने उनके लिए, वो बुलाएंगे तेरे को बंदर। देखो किसी को भी भगवान के दर्शनों में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। भगवान के दर्शनों में बाधा पहुंचाता है उसकी मालूम है क्या गति होती है? जय और विजय को पूछो जाकर के। अरे तू ज्यादा चतुराई से बात मत कर, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। सुदर्शन चक्र यूं प्रकट होकर हनुमान जी की तरफ आया। हनुमान जी ने सोचा कि उस समय तो हम सूर्य को नहीं लिया, मुंह में रख लिया सुदर्शन चक्र, मुंह में रख लिया और अंदर आ गए। अंदर आए तो उन्होंने बार बार राम जी कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे हनुमान आज तू गलती क्यों करता है रे? देखो भगवान कृष्ण थे पर राम रूप से विराजमान थे और उन्होंने पहले ही सत्यभामा जी को बोल दिया कि सत्यभामे आज हनुमान आएगा हमारा रामावतार का भगत, उसके सामने तुम सीता बन करके रहना, अपने सत्यभामा रूप में मत रहना। ठीक है, परवाह नहीं की सीता कोई मेरे से ज्यादा सुंदर थोड़ी हो, मेरे से जैसी सुंदर सीता नहीं हो सकती। तो सत्यभामा अपने ही रूप में आकर बैठ गए। उन्होंने आकर के प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान आज तक गलती क्यों कर रहा है। शास्त्र में आता है कि माता और पिता दोनों हो तो पहले मां को प्रणाम करो, मां के कारण से ही बच्चे का पालन होता है। वो पेट में रखती है, गोद में रखती है, दूध पिलाती है। जितना मां का शरीर से संबंध होता है पुत्र के प्रति, उतना किसी का नहीं होता। तूने मां को प्रणाम नहीं किया, पहले मुझे प्रणाम किया, और मां को देख ही नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा, मां क्षमा करें, मैंने देखा था मुझे ऐसी काली कलूटी कुरूप और ऐसी लगी, मैंने देखा कि कोई आपके यहां मसौता देने वाली दासी है जो अपनी सीमा को पार करके अनजान में अज्ञानता में फूटता में आकर आपके पास बैठ गई। मुझे क्या पता है क्या तुझे इसमें सीता के दर्शन नहीं, सीता का शतांश भी दर्शन नहीं हुआ। सीता के सौंदर्य के सामने एक सोवांश भी होता तो वो न तो सीता जैसा प्यार, न सीता जैसी कृपा, न सीता जैसा रूप लावण्य, कुछ भी तो नहीं है। सत्यभामा जी उठ करके चली गई और आंखों में जल लिए हुए इतना अपमान का अनुभव की तो फिर वो सीता जी के शरण में गई। हे सीता जी, आप जैसी भी हो मेरे अंदर पधारो, पधारो, मेरी बेइज्जती हो रही है। थोड़ी देर में वापिस आई, हनुमान जी उछलने लगे, अब मेरी माँ आई है, अब मेरी माँ आई है। आकर के सीता जी, सत्यभामा जी बैठी तब तक खड़ी रहे, खड़े रहे हनुमान जी। फिर उनके चरणों में बार बार प्रणाम किया, माता जी आज आपने मुझे देरी से दर्शन क्यों दिए, क्या बात हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास गरुड़ जी को हमने भेजा था, गरुड़ जी कहां रह गए, वो तो आए ही नहीं। महाराज गरुड़ जी बहुत ज्यादा तीन पांच करने लगे, गरुड़ जी अपना इतना अहंकार बताने लगे, हम ऐसा है हम ऐसा है। तो हमने देखा कि इनका अहंकार ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने मुख से जितनी अपनी प्रशंसा करता है आदमी उतना ही नीचे गिरता है। तो उससे बचाने के लिए ये मेरे पूंछ में मैंने बांध लिया, ये रिया आपकी गरुड़ जी। भगवान ने कहा, गरुड़ जी क्या बात है। गरुड़ जी ने सिर नीचा कर लिया, कहीं अपने अपने इतना घमंड करोगे, आप नहीं करोगे। फिर कहा कि वो सुदर्शन चक्र ने आपको रोका नहीं, रोका मरा। वो कहा है, अपने लोग जैसे कोई सौंफ खाते हो, इलायची लेते हो, उसका कोई दाना है, लौंग है, वो यहां रख लेते हैं ना, ऐसे उन्होंने उस सुदर्शन को रख रखा। वो ये रे सुदर्शन जी, मुंह में से निकाल कर, सुदर्शन जी तू तो बड़े तेज हो, तुम्हारी धार बड़ी तेज, तुम्हारी चमक बड़ी तेज, तुम्हारी शक्ति भी बड़ी तेज, क्या हो गया साहब, सब कुछ खत्म हो गया। तो देखो ये सब मेरी लीला थी, आज के बाद से ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद इन सब लोगों का अभिमान दूर हो गया। ऐसी ऐसी हनुमान जी महाराज की अनेक कथाएं थी। अब कल से जामवन जी की कथा बताएंगे। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा।